वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह कसस की आयत क्रमांक 76 की तिलावत सुने।
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين।
निश्चय ही कारून मूसा की जाति में से था। फिर उसने उनके विरुद्ध सिर उठाया और हमने उसे इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां उठाना एक शक्तिशाली दल के लिए भी भारी था। हे पैगंबर, याद कीजिए उस समय को जब उससे उसकी जाति के लोगों ने कहा, घमंड से प्रसन्न मत हो कि ईश्वर इतराने वालों को पसंद नहीं करता।
इससे पहले सूरे की कुछ आयतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की घटना का उल्लेख किया गया था, और ये आयतें कारून की जीवनी की ओर संकेत करती हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के काल का एक अत्यंत धनवान व्यक्ति था। इतिहास की किताबों में वर्णित है कि कारून हज़रत मूसा के निकटवर्ती लोगों में से था और आरंभ में उन पर ईमान भी ले आया था, लेकिन वो अपने धन के कारण अहंकार में ग्रस्त हो गया, यहाँ तक कि वो हज़रत मूसा के मुकाबले में खड़ा हो गया।
फिरौन उद्दंडी शक्तियों का प्रतीक था जो लोगों पर अत्याचार करती हैं और सत्य के मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन कारून उन धनवानों का प्रतीक है जो लोगों के सामने घमंड दिखाते हैं और सत्य की शिक्षाओं की अवहेलना करते हैं। सामिरी उन कलाकारों का प्रतीक है जो लोगों को बहकाकर उन्हें सही मार्ग से हटा देते हैं और अनेकेश्वरवाद और पदभ्रष्टता में ग्रस्त कर देते हैं।
आगे चलकर आयत कारून की उद्दंडता का मूल कारण घमंड, अहंकार और निश्चेतना को बताती है कि जैसे जैसे उसका धन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ईश्वर और लोगों की ओर से उसकी निश्चेतना भी बढ़ रही थी, और वो पैसा, सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं एकत्रित करने की कोशिशें बढ़ा रहा था, जबकि धन लोगों की सेवा में खर्च होना चाहिए और उसे समाज के आर्थिक पहिए घूमते रहने चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ धनवान लोग समाज की पूंजी को अपने हित में एकत्रित करते रहें।
इस आयत से हमने सीखा कि धनी होना और माल बढ़ाने के लिए कोशिश करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने धन पर घमंड करना और ईश्वर, पैगंबर व लोगों के मुकाबले में उद्दंडता बहुत बुरी व अप्रिय बात है।
नशा केवल शराब से नहीं चढ़ता, कभी कभी नीच आदमी को अधिक धन मिल जाने पर इतना नशा चढ़ जाता है कि वो घमंड में हर चीज़ भूल जाता है। इस प्रकार के लोग अपने धन व शक्ति के बल पर दूसरों के अधिकारों का हनन करके आनंदित होते हैं।
आइए अब सूरह कसस की आयत क्रमांक 77 की तिलावत सुने।
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين।
और जो कुछ ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें से प्रलय के घर के निर्माण की कोशिश करो, और दुनिया में से अपने हिस्से को न भूलो, और लोगों के साथ भलाई करो जैसा कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ भलाई की है, और धरती में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश में न रहो कि निश्चय ही ईश्वर बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता।
इससे पहले की आयत में कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों में कुछ लोग जो समझदार और सच्चाई समझने वाले थे अपने आप को छोटा और कारून को बड़ा समझने के बजाय पूरे साहस के साथ उसे उपदेश देते थे कि वो धन पर घमंड न करे, कि इस स्थिति में वो ईश्वर का प्रिय नहीं रह जाएगा, और इसी प्रकार लोग भी घमंडी धनवानों को पसंद नहीं करते।
यह आयत पिछली आयत का क्रम आगे बढ़ाते हुए दूरदर्शी ईमान वालों की जबान से चार अन्य उपदेश बयान करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संसार प्रलय की खेती है। अगर यहाँ कुछ बोया ना जाए तो प्रलय में कुछ काट नहीं पाएंगे। ये धन दौलत उस बीज की तरह है जो ज़मीन में बोया जाता है ताकि उससे फसल उगे। अगर बीज को गोदाम में एकत्रित किया जाए, चाहे उसकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों न हो, उससे कोई फसल नहीं उगेगी।
दूसरा उपदेश यह है कि अगर हम ये कहते हैं कि संसार के माल से अपनी प्रलय की यात्रा के लिए कुछ चीज़ें एकत्रित कर लो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सांसारिक जीवन को भूल जाओ और अपना पूरा माल ईश्वर के मार्ग में दे दो, बल्कि उससे अपने और अपने परिवार के आराम के साधन भी उपलब्ध करने चाहिए। अर्थ यह है कि लोक परलोक दोनों को दृष्टि में रखो और दोनों में से जो भी तुम्हारे निकट अधिक महत्वपूर्ण है उसके लिए अपने माल से लाभ उठाओ।
तीसरा उपदेश यह है कि ये मत सोचो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ही है। ये सारा माल ईश्वर का है जिसने उपकार करके उसे तुम्हारे हवाले किया है। स्वयं को अपने माल का मालिक नहीं बल्कि अमानतदार समझो। अतः जिस तरह ईश्वर ने तुम्हारे साथ भलाई की है, उसी तरह तुम भी अन्य लोगों के साथ भलाई करो।
कारून को ईमान वालों का चौथा उपदेश ये था कि अगर तुम इन उपदेशों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा माल तुम्हारी अपनी और समाज की तबाही का कारण बन जाएगा। तुम्हारा धन और माल समाज के मामलों में सुधार के बजाय समाज के वर्गीकरण और तुम्हारे प्रति लोगों की शत्रुता और द्वेष में वृद्धि का कारण बनेगा। जैसा कि हम आज पूंजीवादी समाजों में देखते हैं कि बहुत कम लोगों के हाथों में समाज के बैंकों में पूंजी का नियंत्रण होता है और अधिकतर लोग दासों की तरह काम करते हैं ताकि धनवान अधिक धनवान बनते जाएं।
इस आयत से हमने सीखा कि सभी आर्थिक गतिविधियों में लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य प्रलय में ईश्वर की प्रसन्नता होना चाहिए, और अगर इस मार्ग में उनके सांसारिक काम भी पूरे होते रहें तो बेहतर है।
हमें अपने परलोक के जीवन पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही संसार से भी लाभ उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार में अपने भाग को दृष्टिगत रखना चाहिए और बाकी का भाग प्रलय के मार्ग में खर्च करना चाहिए।
धन और माल अगर प्रलय और दूसरों के साथ भलाई के लिए प्रयोग हो तो न केवल ये कि बुरा नहीं है, बल्कि वो मनुष्य के स्थायी कल्याण व सौभाग्य का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।
आइए अब सूरह कसस की आयत क्रमांक 78 की तिलावत सुने।
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون।
कारून ने कहा कि ये माल मुझे अपने उस ज्ञान के कारण दिया गया है जो मेरे पास है। क्या उसे ये ज्ञात नहीं था कि ईश्वर उससे पहले कितनी ही ऐसी जातियों को तबाह कर चुका है जो उससे अधिक शक्तिशाली और माल एकत्रित करने में उससे बढ़कर थीं? और क्या उसे पता नहीं था कि अपराधियों से तो उनकी तबाही के समय उनके पापों के विषय में पूछा भी नहीं जाता?
इस आयत में ईमान वालों के उपदेशों के जवाब में कारून का जवाब इस प्रकार पेश किया गया है कि वो उनका उपदेश स्वीकार करने के बजाय बड़े घमंड से कहता है कि ये धन और माल मेरे अपने ज्ञान और प्रयास के कारण है, अतः इसका अधिकार भी तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे ही पास है। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। मुझे स्वयं पता है कि इसे कहाँ खर्च करना है और कहाँ एकत्र करना है। अगर ईश्वर ने ये धन और माल मुझे दिया है तो निश्चित रूप से उसने मेरे ज्ञान को देखा है और मुझे इसके योग्य समझा है।
कुरान मजीद घमंडी धनवानों की इस तरखीन सोच के जवाब में कहता है कि क्या उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है और नहीं जानते हैं कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली और धनवान लोग गुजर चुके हैं, लेकिन चूंकि वे सत्य के मुकाबले में खड़े हुए इसीलिए वे इसी संसार में अपने माल के साथ तबाह हो गए।
इस आयत से हमने सीखा कि अगर धन मनुष्य के अपने ज्ञान और मेहनत का परिणाम हो तब भी उसे निश्चेतना और घमंड का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें उसे ईश्वर का उपकार समझना चाहिए।
ज्ञान, शक्ति और धन पर घमंड इस संसार में मनुष्य की तबाही का कारण बनता है।